कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवः मामकापाण्डवाश्चैव
किं
अकुर्वत संजया धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युयुत्सवः मामकापाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय
Dhritarashtra said, O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight?
Dhritarashtra ne kaha ki he Sanjaya, Dharmakshetra Kurukshetra mein ekatrit huye, mere aur Pandu ke putra ek yuddha ki ichcha se ekatrit the, unhone kya kiya?
Purport by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya.
Bhagavad Gita jo hai, wo sabse zyada padhe jane wale Upanishad hai.
There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations.
त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहे की मनुष्याने भगवान कृष्णाच्या भक्त्याच्या मदतीने भगवद्गीताचे अत्यंत काळजीपूर्वक अध्ययन केले पाहिजे आणि या प्रकारे वैयक्तिक हेतूपूर्वक मत न लावता कृष्ण भक्ताकडून समजली पाहिजे.
The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself. The way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord.
Bhagavad Gita hi kontya pabatine janun yavi ya badalche spashta udaran Gita madhech aahe ani te mhanje Arjuna.
If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of disciplic succession, without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world.
Ekada asha vyaktik hetu virahit guru shishya paramparemadun gyan janun ghena bhagwan asle tar he samagra vedic gyan tase jagatil itar kontai shastra madhe na adanya sarva goshti bhagavad gita madhe pau shake.
One will find in Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere.
Samagra Vedic Gyan tase jagatil itar kontai shastra madhe adanyarya va na adanya sarva goshti ekada Bhagavad Gita madhe pau shakel.
That is the specific standard of the Gita.
He Bhagavad Gita che ek durmal vaishishtya ahe.
It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna.
He gyan sakshat purushottam Bhagavan Shri Krishna ne sangitlyamule paripurna asse astikvadi vigyan ahe.
The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya, as described in the Mahabharata, form the basic principle of this great philosophy.
Mahabharata varnelela Dhritarashtra आणि संजय यांनी केलेली चर्चा ही या श्रेष्ठ तत्वज्ञानाचा मूलभूत आधार आहे.
इट इज अंडरस्टूड दॅट दिस फिलॉसॉफी इव्हॉल्व्ड ऑन द बॅटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र व्हिच इज अ सेक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फ्रॉम द इममोरियल टाइम ऑफ द वेदिक एज.
पुरातन वैदिक काळापासून पवित्र तीर्थस्थळ असणाऱ्या कुरुक्षेत्र या ठिकाणी गीतामधील तत्वज्ञान सांगण्यात आल्याचे आपल्याला समजून येते.
It was spoken by the Lord when he was present personally on the planet, the guidance of mankind.
जेव्हा स्वतः भगवंत या पृथ्वीतलावर होते तेव्हा त्यांनी मानव समाजाच्या मार्गदर्शन करिता हे ज्ञान सांगितले.
The word Dharmakshetra, a place where religious rituals are performed, is significant Because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna.
येथे धर्मक्षेत्रे हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे कारण कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर पुरुषोत्तम श्री भगवान हे अर्जुनाच्या बाजूने उपस्थित होते.
Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory.
कुरुच्या पिता धृतराष्ट्र हा आपल्या पुत्रांच्या अंतिम विजयाबद्दल अत्यंत साशंक होता.
In his doubt, he inquired from his secretary Sanjay, "What did my sons and the sons of Pandu do?"
आणि संशयित असल्यामुळे त्याने आपल्या सचिव संजय याच्याकडे विचारलं की त्याने काय केले.
He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for the determined engagement of the war.
पूर्ण निर्धारयुक्त युद्ध करण्याच्या निश्चयाने स्वतःचे आणि पांडूचे पुत्र कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर असल्याची त्याला पुरेपूर खात्री होती.
Still, his inquiry is significant.
तरीसुद्धा त्याची विचारणा महत्वपूर्ण आहे.
He did not want to a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure that the fate of his sons on the battlefield.
भावामध्ये तडजोड व्हावी अशी त्याची इच्छा नव्हती आणि त्याला युद्धभूमीवर आपल्या पुत्राच्या विधी लिखिताबद्दल निश्चितपणे जाणून घ्यायचे होते.
Because the battle was arranged to be fought in Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place and the outcome of the battle.
कुरुक्षेत्राच्या वैदिक साहित्यामध्ये स्वर्गातील देवतासाठी सुद्धा पूजनीय असे स्थान म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे आणि युद्ध हे कुरुक्षेत्रावर करण्याच्या ठरवल्याने ते पवित्र स्थान असल्यामुळे त्यांच्या युद्धातील अंतिम निर्णयावर होणाऱ्या परिणाम धृतराष्ट्र आणखी भयभीत झाला.
He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous.
याचा प्रभाव अर्जुन व इतर पांडुपुत्र हे स्वाभाविकतेच्या सद्गुणी असल्यामुळे त्यांना अनुकूल असाच होणार हे तो उत्तम रीतीने जाणून होता.
संजय वॉज अ स्टुडंट ऑफ व्यास अँड देअरफोर बाय द मर्सी ऑफ व्यास संजय वॉज एबल टू एन्विजन द बॅटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इवन व्हाइल ही वॉज इन द रूम ऑफ धृतराष्ट्र.
संजय हा व्यासांचा शिष्य होता आणि म्हणून व्यासांच्या कृपाने तो जरी धृतराष्ट्रच्या महालामध्ये होता तरी तो कुरुक्षेत्र येथे युद्धभूमी पाहू शकत होता.
And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield.
यासाठी धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल त्याच्याकडे विचारणा केली.
Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein.
पांडव आणि धृतराष्ट्रचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचे अंतर्मन उघडे करून दाखवण्यात आले आहे.
He deliberately claimed only his sons as Kurus and he separated the sons of Pandu from the family heritage.
त्याने मुद्दाम आपल्या पुत्रांच्या कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि पांडुपुत्रांना कुळाच्या वारस हक्कातून वगळले.
One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu.
यावरून कोणत्याही धृतराष्ट्र आपल्या पुत्रास म्हणजे पांडुपुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो.
As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others will be wiped out, and thoroughly religious persons headed by Yudhisthira will be established by the Lord.
प्रारंभिक केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतामधून अनावश्यक कचरण काढून टाकले जाते त्याप्रमाणे धर्मपालक भगवान श्रीकृष्णाच्या उपस्थित कुरुक्षेत्रावर तिरुवत असा धृतराष्ट्राच्या पुत्रासहित इतर सर्वांच्या समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीची लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करतील.
This is the significance of the words Dharmakshetre, Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance.
Dharmakshetre va Kurukshetre ya shabdana aitihasik mahatva barobar hehi vishesh mahatva ahe.
Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do?
धृतराष्ट्र म्हणाला, हे संजय, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्र एकत्रित झाल्यावर युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केलं?
We have come to Jyotisar.
हम या ज्योतिसर पर आए हैं.
The place where Sri Bhagavad Gita was spoken for the benefit of all humanity.
सारी मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पर भगवद गीता बोली गई थी.
The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, descended into this world to teach the path of perfection.
भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए ये धर्म का मार्ग दिखाने के लिए.
And the essence of those teachings is spoken right in this place, under this immortal banyan tree in Kurukshetra.
और उनकी शिक्षा का जो सार है वो इसी वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र में बोला गया था.
ये भागवत गीता is 18 chapters within the great literary work of Srila Vyasadeva called Mahabharata.
श्रीमद व्यासदेव के रचित साहित्य महाभारत के बीच में यह 18 अध्याय का भगवद गीता है.
इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द आचार्यस दैट भगवद गीता इज लाइक अ काउ.
आचार्य बताते हैं कि भगवद गीता एक गाय के समान है.
कृष्ण इज गोपा, ए कावर्ड बॉय.
कृष्ण ग्वाले हैं.
एंड अर्जुना is like the calf.
Arjun bachde ke saman hai.
Krishna as cowherd boy is extracting the milk from the cow of Gita, which is the very essence of all Vedic knowledge.
Krishna gwale ke roop mein jo hai ye doodh nikal rahe hain Gita ke roop mein, jo ki Vedic sahitya ka saar hai.
And Arjuna is achieving the nourishment of transcendental knowledge.
Aur Arjun jo hai divya gyan ko prapt kar rahe hain.
Arjuna was the dear and intimate friend of Lord Shri Krishna.
Arjun jo hai wo Krishna ke param mitra the.
One of the five Pandavas.
Aur panch Pandavon mein se ek hai.
Mahabharat describes how Pandavas were the rightful heirs to the throne of the world.
महाभारत में बताया गया है कि पांडव वास्तव में जो है वो राजगद्दी के अधिकार थे.
बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एनवी इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट मोटिवेट्स पीपल.
लेकिन इस भौतिक जगत में ईर्ष्या जो है वो एक चीज है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है.
एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड.
सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है.
भोक्ता राम जगत तपसम सार्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सार्वभूतानम ज्ञातवा मम शांति मृत. Gita tells us we can achieve peace when we simply recognize and put into practice that Krishna is the proprietor of everything.
गीता हमें समझाती है कि कृष्ण ही सब चीजों के मालिक है. ये बात को हमें समझना है और उसको व्यवहार में डालना है.
All that exists is meant for his satisfaction.
जब सब कुछ जो है वो उनके संतुष्टि के लिए है.
And he is the true well-wishing friend of all living beings.
वो सबके सच्चे हितैषी मित्र हैं.
But we remain in this world because we are envious of God.
हम इस दुनिया में इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं.
We want to be the proprietor.
हम मालिक बनना चाहते हैं.
We want to be the enjoyer.
हम भोक्ता बनना चाहते हैं.
And we want to feel that I am the benefactor of others.
और हम सोचना चाहते हैं कि मैं दूसरों का हितैषी हूँ.
Of course, in our conditioned state, Lord Shri Krishna is very, very far from our consciousness.
बद्ध अवस्था में कृष्ण हमारी चेतना से बहुत दूर है.
So therefore, since it's difficult to be directly envious of God, we are envious of his part and parcels who are having something beyond what we have control.
और क्योंकि हम भगवान को पास में नहीं देख रहे इसलिए हम उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो भगवान के अंश हैं.
बिकॉज बाय नेचर वी आर एनवियस ऑफ कृष्ण, वी आर पोटेंशियली एनवियस ऑफ एनी वन ऑफ हिज पार्ट्स एंड पार्सल्स.
क्योंकि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं इसलिए हम कृष्ण के हर एक अंश से ईर्ष्या करने लगते हैं.
टुडे इन आवर सोसाइटी देयर इज वेरी ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट.
आज हमारे समाज में बहुत संघर्ष होता है.
पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट,
राजनीतिक संघर्ष.
बिकॉज डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैटेगोरीज आर क्लेमिंग दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू मी.
क्योंकि अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग स्थान में बोलते हैं ये भूमि मेरी है.
Somebody else wants what you have.
और जो आपके पास है वो कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है.
The history of the world is a history of wars.
अगर दुनिया के इतिहास देखें तो वो युद्धों का इतिहास है.
Violence, bloodshed and death.
हम देखते हैं कि खून बहता है, लड़ाई होती है और अंत में जो है मृत्यु होती
है. People are not willing to recognize that everything is Krishna.
क्योंकि लोग ये बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि सब कुछ कृष्ण का है.
Why don't we use everything according to Krishna's direction instead of according to our concoction?
क्यों नहीं इन सब चीजों को कृष्ण की इच्छा के अनुसार उपयोग करें बजाय इसके कि अपने स्वयं की इच्छाओं के अनुसार.
Economically there's terrible conflict.
आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष है.
Because people are thinking in terms of I and mine.
क्योंकि लोग सोचते हैं ये मैं और मेरा.
I am this body.
मैं ये शरीर हूँ.
And whatever is in relation to this body is mine.
ये शरीर से संबंधित है वो मेरा.
These two misconceptions are the very basic principles of material bondage.
और ये सब चीजें जो है भौतिक संघर्ष के सिद्धांत है.
People want to accumulate more and more and more.
लोग और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना चाहते हैं.
And for this purpose we create a artificial status in society of finance econ, and economy.
और इसलिए हम कृत्रिम समाज बनाते हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए है.
And there's inflation.
और फिर चीजों के दाम बढ़ते हैं.
And there's regression and deflation.
और फिर कम होते हैं.
And there's all sorts of terrible omens for economic collapse.
और आर्थिक नष्ट होने के बहुत से लक्षण दिखाई पड़ते हैं.
Locally and internationally.
पास में और पूरे विश्व में.
Because people want to accumulate more, 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 more.
क्योंकि लोग और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करना चाहते हैं.
And we find it creates so much hatred.
और हम देखते हैं कितनी घृणा की भावना पैदा होती है.
When the common people see that they're being exploited by the rich people, they revolt.
जब साधारण लोग देखते हैं कि अमीर लोग हमारा शोषण कर रहे हैं तो वो क्रांति कर देते हैं.
That is where communism comes from.
इसीलिए समाजवाद पैदा होता है.
And people are struggling so hard just to somehow or other survive materially.
और लोग संघर्ष कर रहे हैं इतना ज्यादा सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए.
But the residents of Vrindavan, we don't see that they're struggling so hard just to survive.
हम देखते हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो कोई इतना संघर्ष नहीं कर रहे अपना पालन करने के लिए.
Because they have no envy.
क्योंकि उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है.
They're living in harmony with the will of God.
भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं.
Therefore they're happily doing their occupation and everything is being provided.
और वो अपना सारा कार्य करते हैं और सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है.
So on every level, envy is there within our heart.
और हर स्तर पर हमारे हृदय में ईर्ष्या है.
And Duryodhana, as well as his 99 brothers, were victims of this envy.
और दुर्योधन और उसके 99 भाई इस ईर्ष्या के गुलाम हैं.
He was thinking, Pandavas, they are going to inherit the throne. What about me?
वो सोच रहे थे कि पांडु के पुत्र जो राजा बनेंगे लेकिन मेरा क्या होगा.
I should be king.
मुझे राजा बनना चाहिए.
And in order to accomplish this, he committed so many terrible atrocities.
और ये प्राप्त करने के लिए उसने कितने सारे अत्याचार किए.
Duryodhana, even if he just was content being a great prince, he would have been wealthier than practically any man on earth today.
अगर दुर्योधन जो राजकुमार के रूप में संतुष्ट होते तो भी आज इस दुनिया के अमीर सबसे अमीर व्यक्ति होते.
He would have been loved and protected by Yudhishthira Maharaj throughout his whole life.
और युधिष्ठिर महाराज उनका पूरा जीवन भर उनका संरक्षण करते.
He would have had everything.
उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता.
And more.
और ज्यादा उससे भी ज्यादा.
But he wasn't satisfied.
लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे.
Therefore he gave Pandavas deadly poison.
जिन्होंने पांडवों को भयंकर विष दिया.
He tried to burn them alive in a house of lath.
और उनको वारणावत में अग्नि में जलाने का प्रयास किया.
He plotted and schemed with his brothers to murder the Pandavas.
और पांडवों को मारने के लिए उन्होंने भाइयों के साथ षड्यंत्र रचा.
Along with Shakuni, that infamous match of dice, he cheated the Pandavas.
और बदमाश शकुनि के साथ मिलकर उन्होंने पांडवों को धोखा दिया.
आउटराइट लो क्लास चीटिंग,
जो कि बिल्कुल ही तुच्छ श्रेणी का एक धोखेबाजी का मैच था.
एंड आफ्टर दिस अट्रॉसिटी ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट देम,
और इतना अत्याचार करने के बाद और उनका मान भंग करना चाहते थे.
टू स्ट्रिप द वाइफ नेकेड इन फ्रंट ऑफ मैन,
और उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया पुरुषों के सामने.
Taking away all their possessions,
उनका सब कुछ छीन लेने का प्रयास किया.
Banishing them to the forest for 12 years,
और 12 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया.
And even after they were banished to the forest, and he was the prince regent, the next king to be coronated after Dhritarashtra, still they were not satisfied.
और जब वो जंगल में चले गए और दुर्योधन बाद में राजकुमार हो गए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे.
They went through so many efforts to humiliate them.
और भी ज्यादा उनका अपमान करने का प्रयास किया.
Trampled upon their hearts,
उनके हृदय को तोड़ दिया.
And even to kill them,
और फिर से मारने का प्रयास किया.
And toward the end of the 12 years, it was their aim to somehow or other find them and cause them to be banished for another 12 years.
और 12 वर्ष के बाद उनका उद्देश्य था कि उनको अज्ञातवास में खोज दें, जिससे फिर से उनको 12 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए.
How vicious the ego is when we allow it to be uncontrolled.
अगर हम अपने मिथ्याभिमान को वश नहीं करते तो कितना भयंकर सिद्ध हो सकता है.
And Pandavas, they were so pure in heart.
और पांडव हृदय से बहुत शुद्ध थे.
So content and compassionate.
और दयालु और सब संतुष्ट थे पूर्ण रूपेण.
युधिष्ठिर महाराज, he only asked for 5 little villages.
Yudhishthira Maharaj ne sirf 5 gaon mange.
And Kurus could take, Dhritarashtra could take everything else with his son.
और कुरु धृतराष्ट्र और बाकी सब कुछ ले सकते अपने पुत्रों के साथ.
But Duryodhan could not tolerate giving them even the amount of land to put the head of a pin into.
और दुर्योधन तो बताया कि सुई के नोक के बराबर भी जगह मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ.
Therefore, by the arrangement of Lord Krishna, these demoniac people had to be removed from the earth.
और कृष्ण के इंतजाम से असुर व्यक्तियों को धरती से नाश करना पड़ा.
One of my dear god brothers was explaining to me, he had done a very, very deep study of Mahabharat.
मेरे एक प्रिय गुरु भाई जिन्होंने महाभारत का बहुत अध्ययन किया, वो मुझे समझा रहे थे.
There was a time, we have explained, when Duryodhana, he knew the Pandavas were living like hermits in the forest.
Pandav jo hai jungle mein bilkul vanvasi ki tarah reh rahe the.
Duryodhana decided to have a royal procession where he's riding on the king's elephants with all the insignias of royalty, just to come by the Pandavas and look at them laying in the dirt with nothing, just to humiliate them and try to crush their hearts.
Duryodhan ke aisi yojana thi ki ek bar bade hathi aur pure senaon ke sath pandavon ke paas jana aur jab wo vanvas mein zameen par hai to unke pura apman karna is tarike se.
But on their way to see Pandavas, one Gandharva fought against Duryodhana and his assembly of Kuras.
और रास्ते में एक गंधर्व ने जो है दुर्योधन और उनके सबके साथ युद्ध किया.
This Gandharva fought so hard that Karna and all the others had to run away for their lives.
और इतना भयंकर युद्ध किया गंधर्व ने कि कर्ण और बाकी सब लड़ाई से भाग गए.
And Duryodhana was captured like an animal.
और दुर्योधन को पशु के समान बंदी बना लिया गया.
And the Kurus had to run to the Pandu Yudhishthira Maharaj and say, "Please help us, help us."
और सब पांडव जो है पांडवों के पास पहुंचे और बोले, हमें बचाओ, मदद करो, मदद करो.
Yudhishthira Maharaj, he said to Pandavas, "Go help him."
Yudhishthira Maharaj अपने भाइयों से कहा, जाओ, मदद करो.
Bhima was very happy as Duryodhana was getting defeated.
Bhima ko bas khushi aur khushi ho rahi thi ki Duryodhana parajit ho raha.
Let nature take its course. Let him be captured and killed. Why should we help that rascal?
Wo sochne lage, badmash ko hum kyun madad kare, usko marne do.
Yudhisthira said, amongst ourselves, there are 5 and they are 100 and we may be fighting. But when some outsider attacks, we are 105 and we must stand together.
Yudhisthira Maharaj bole, humare bich mein hum 5 hai aur aap 100 hai, lekin jab koi bahar ka vyakti aakraman karta hai, to hum sab 105 ho jate hain.
So Yudhisthira was brought, Duryodhana was brought to Yudhisthira captive.
Aur Duryodhan ko jo hai, Yudhisthira Maharaj ke samne bandi bana ke laya gaya.
And Yudhisthira said, let him go.
Yudhisthira ne kaha ki chhod do.
Duryodhana, why do you do like this? You should go.
Duryodhana, aisa kyun karte ho? Jao.
Duryodhana, to him, that the Pandavas saved him and Yudhisthira showed compassion to him, made him even more envious.
Aur Duryodhana ko jab mere ko aur bhi gussa aaya dekhkar ki Pandavon ne mujhe bachaya aur meri beizzati ki.
He was so humiliated.
Uska maan bhang ho gaya.
Could not tolerate it.
Wo sahan nahi kar paya.
It was such an embarrassment.
Aur kitni lajjit ho gaya.
That his enemy saved his life.
Ki mere shatruon ne mere pranon ko bachaya.
He decided to just fast till death.
Sochta hai ki main anshan karunga mrityu tak.
At that time, Rakshasas from lower planets.
Us samay niche ke logon se rakshas aaye.
They brought him down to their planet.
Unko apne niche ke log mein le gaye.
And said, Duryodhana, what are you doing?
Unka Duryodhan, tum kya kar rahe ho?
You have forgotten your mission.
Aapka uddeshya to bhool gaya.
Your mission is to spread a dharma throughout the world.
Aapka uddeshya hai puri duniya mein adharm ka prachar karna.
Your mission is to wipe out religion.
Aur dharm ko samul nash kar dena.
Wipe out dharma.
Unar usse dharm ka nash karna.
And pollute the world.
Aur duniya ko pradushit karna.
That is our conspiracy.
Ye hamara shadyantra hai.
You were sent for that purpose.
Aur tumko uske liye bheja gaya tha.
Now don't give up so easy.
Itna aasani se haar mat mano.
Go back.
Jao.
And destroy the Pandavas.
Pandavon ko nash kar do.
And destroy everything Yudhisthira represents.
Aur Yudhisthira iska pratinidhitva karte hain, unka bhi nash kar do.
And Duryodhana, due to that nice satsang he became very much enthusiastic to go back and persecute the Pandavas.
Aur iska satsang ke baad Duryodhana ko aur shakti mili, wapas jaakar fir se Pandavon se ladai karne.
So he was not just an envious person.
Wo ek khali ishalu vyakti nahi the.
He had a very evil motive.
Uske bahut bure irade bhi the.
And this is Krishna explains in Gita. Haritramaya sarvanam vinashaya cha duskritam dharma samstapa narodaya sambhavami. He comes to destroy the wicked.
Bhagavan batate hain ki main dushton ka nash karne ke liye prakat hota hu.
And Duni Devi approached Lord Brahma in the form of a cow. She said, I cannot bear the burden of all these demoniac kings who are exploiting me.
Bhumi Devi ek gaay ke roop mein Brahma ji ke paas aaye aur bataya ki main in dushton ke bojh ka nahi utha sakti.
So Brahma and the devatas prayed to Lord Vishnu to descend.
To Brahma ji aur sare devtaon ne Bhagwan Vishnu se prarthna ki prakat hone ke liye.
And Lord Vishnu spoke to Brahma.
Aur Bhagwan Vishnu ne Brahma ji se bola,
that I will descend into this world.
Main is dharti par prakat honga.
And he came as the son of Vasudeva and Devaki.
Aur Vasudeva aur Devaki ke putra ke roop mein prakat hue.
And many of his great eternal associates also appeared with him.
Aur unke kai nitya sahachar bhi unke saath prakat hue.
As the residents of Vrindavan.
Vrindavan vasiyon ke roop mein.
Dwarka.
Dwarka.
Mathura.
Aur Mathura.
And many of his intimate associates like the Pandavas also.
और उसमें से कई और भी सहचर जैसे कि पांडव
टू असिस्ट इन हिज मिशन
उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने के लिए आए.
नाउ वी फाइंड द लॉर्ड श्री कृष्ण ही पर्सनली विद हिज ओन हैंड्स किल्ड सो मेनी ऑफ द डीमन राक्षसस हु मेड दिस कंस्पिरेसी टू कॉन्कर द यूनिवर्स.
हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से वो है इतने सारे असुरों का अंत किया.
इट इज एक्सप्लेन्ड इन आवर शास्त्रस दैट द डेमिगॉड्स very powerful.
हमारे शास्त्र में बताया गया कि देवता बहुत शक्तिशाली थे.
What is a rakshasa?
राक्षस का अर्थ क्या होता है?
Rakshasa isn't just a human being who likes to eat humans.
राक्षस का मतलब ये नहीं कि एक मानव जो कि दूसरे मानव को खाता है.
Rakshasas are a race.
Rakshas ek puri jati hai.
They are a particular species of human existence.
Wo mano astitva ki ek yoni hai.
It's very, very powerful.
Ye bahut shaktishali hai.
They are as powerful as the demigods.
Wo devtaon ke saman shaktishali hai.
The difference is the demigods are sura and they are asura.
The devta hai wo sura hai aur dusre jo hai wo asura hai.
The demigods are powerful class, powerful species of life who are all engaged in the service of the Lord.
Devta bahut shaktishali yoni hai jo ki sab bhagwan ki seva mein lage hain.
And these demon rakshasas, they are practically equally powerful, but they are against the will of the Lord.
Aur rakshas utne shaktishali hain lekin wo bhagwan ke viruddh hain.
So for both the devatas as well as the rakshasas, human society is simply insignificant.
Devtaon aur rakshas dono ke liye manav samaj jo hai tuchh hai.
So we find that these rakshasas, they made a conspiracy.
Rakshason ne ek shadyantra kiya.
The conspiracy was to conquer the entire universe.
Aur wo kya tha ki pure brahmand ko jeetna.
And they wanted the earth planet to be the base by which they would all meet, and that would be their headquarters.
Aur wo isse kehte ki prithvi ek sthan hoga jahan par hum ekatrit honge aur wo hamara adda hoga.
So all these various rakshasas from various demonic planets of the universe were taking birth on earth.
Aur alag alag sthanon se jo hai rakshas is dharti par janam le rahe the.
That is why Krishna came at that time to take birth on earth.
Isliye Krishna bhagwan us samay dharti par janam liye.
Kamsa, Jarasandha, Shishupal. They were so powerful like thousands of elephants.
Kamsa, Shishupal, Jarasandha, hajaron hathiyon ka bal tha uske andar.
They were all working together.
Aur sab ekatrit hokar karya kar rahe the.
To destroy dharma and conquer the universe.
धर्म का नाश करके ब्रह्मांड को जीतने के लिए.
So Krishna personally with his own hands killed so many of those demons.
कृष्ण ने अपने हाथों से अनेक असुरों का वध कर दिया.
He killed Putana.
उन्होंने पूतना को मारा.
त्रिनावर्त.
त्रिनावर्त को मारा.
अघासुर.
और अघासुर को.
वत्सासुर.
वत्सासुर को.
बकासुर.
बकासुर.
केशी. Arishtasura.
Arishtasura.
Along with Balaram, Pralambasura, Dhenukasura.
Pralambasura, Dhenukasura, to Balaram ji ke saath mara.
Vyomasura.
Vyomasura.
And then he left Vrindavan.
और वृंदावन छोड़ के
पर्सनली विद हिज ओन हैंड्स ही पंच कम्स इन एंड हिट एंड किल्ड हिम.
और अपने हाथों से कंस को मार दिया उन्होंने.
ऑल ऑफ दीज डीमंस वर पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी अंडर कंस.
और ये सब जो असुर है वो कंस के षड्यंत्र का भाग था.
इट इज डिस्क्राइब्ड इन गार्गा संहिता हाउ कंस एक्चुअली वेंट टू डिफरेंट डेमोनिक प्लैनेट्स and personally conquered these demons and had them on the verge of death.
Kamsa ke bare mein yahan bataya gaya hai Samhita mein ki vastav mein Kamsa jo hai sab pura dharti par ghuma asuron ko unne parajit kiya aur mrityu ke sar
par spare your life as long as you come down to the earth, take birth and be my servant.
Main aapko chhod dunga is sharat pe ki aap dharti par aao, janam lo aur meri sahayata karo.
So it's not that the conspiracy of demons is based on love and trust.
Unki shadyantra hai wo prem ki bhavna par aadharit nahi hai.
It's based on
shanti banaye rakhe hai.
Power, greed and envy.
Ye irsha ke upar aadharit.
Then there was Jarasandha.
Aur phir Jarasandha tha.
Very, very powerful.
Bahut shaktishali.
He attacked Krishna 18 times.
Did he make it 17
times?
17
times.
He came 17, 18 times. He came 17
times. And each time he was bringing armies and armies and armies.
Or
sometimes 20 Akshahini divisions of soldiers. That's more than on the battlefield Kurukshetra.
There were 17 Akshauhini divisions of soldiers that fought in Kurukshetra.
यहाँ पर कुरुक्षेत्र में 17 अक्षौहिणी सेना थे, इससे ज्यादा जरासंध ले आ रहे थे.
But Jarasandha was burning for 17 or 18 times. He brought over 20 Akshauhini divisions of soldiers.
17 बार थे और वो 20 अक्षौहिणी से ज्यादा सेना को हर बार लेकर आए.
Assembling all these demoniac kings in their armies.
इतने सारे जो है असुरों को सेना में एकत्रित करके.
Coming right to Mathura.
और मथुरा में ले आते.
Destroyed them.
Krishna को समूल नाश कर दिया.
Single army.
अकेले.
He hardly used his armies.
और सेना का उपयोग भी ज्यादा नहीं किया.
And then Krishna killed Dantavakra.
फिर उसके बाद कृष्ण ने दंतवक्र को मारा.
And he killed Shishupal.
फिर शिशुपाल को मारा.
Salva.
शाल्व को मारा.
And when all these gigantic asuras were killed by Krishna's own personal hands.
जब तक बड़े बड़े असुर कृष्ण के हाथों ही मारे गए कुछ बच गए थे.
दुर्योधन
और उनके नेतृत्व नेता थे दुर्योधन.
कृष्ण डिसाइडेड आई किल्ड एनफ.
कृष्ण से मैंने बहुत मार लिया.
नाउ माय डिवोटीज
अरे मेरे भक्त मारे मैं उनको शक्ति प्रदान
करूं. सो दिस बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाज एक्चुअली अल्टीमेटली द विल ऑफ द लॉर्ड.
वास्तव में ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ.
ब्रिंग बैक द सर्वाइविंग असुरस.
जो बचे कुछ असुर थे उनको
वापस बैटल फील्ड
उनको युद्ध की भूमि में एकत्रित करने के लिए
और
एक दूसरे को मार दें
और
उनके भक्त विजयी हो जाए.
दुर्योधन रेप्रेजेंट्स the very essential anartha of envy that keeps havoc, violence and hatred within this world.
इस दुनिया में हिंसा पैदा करने वाली की जो ईर्ष्या की भावना है वो दुर्योधन उसका प्रतिनिधित्व करते हैं.
And the five Pandavas represent the true representatives of God.
और पांच पांडव जो है भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं.
So the battle was inevitable.
तो युद्ध तो होना ही था.
Although Krishna himself personally assumed the position of the messenger of Yudhisthira to try to offer a opportunity for peace.
भगवान कृष्ण खुद युधिष्ठिर के संदेश भाग के रूप में गए और उनको शांति करने का एक अवसर प्रदान किया.
But Duryodhan was so demonic.
लेकिन दुर्योधन इतना असुरी व्यक्ति था.
Even when Krishna came as a messenger of peace.
जब कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए
दुर्योधन sent his armies to arrest him and put him in prison.
दुर्योधन ने उनकी अपनी सेना को भेजा और उनको जेल में डालने का प्रयास किया.
कृष्ण manifested his विराट रूप.
कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया.
They could not come near him.
तो उनके पास भी नहीं जा सके.
But even after seeing Krishna's universal form, Duryodhana's heart was not softened at all. Rather, he became more envious.
और ये देखने के बाद भी उसका हृदय नरम नहीं है, उसको और गुस्सा आ गया, ईर्ष्या होने लगी.
So there were 11 Akshauhini divisions of soldiers on the side of the Kurus.
कुरु के साइड में 11 अक्षौहिणी सेना थी.
7 divisions of soldiers called Akshauhini on the side of the Pandavas.
और पांडवों की ओर से सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी.
They assembled here in Kurukshetra.
वो यहाँ पर एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र में.
Arjuna accepted Krishna as his chariot driver.
अर्जुन ने कृष्ण को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया.
Krishna said, I will not fight in this battle.
कृष्ण ने बताया कि मैं युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा.
I give some of my army to one side. And on the other side, I will be, but I will not lift a single weapon.
एक तरफ मैं अपनी सेना का कुछ अंश दूंगा और दूसरी तरफ मैं रहूंगा लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा.
Duryodhana was thinking, what is the use of Krishna if he's not going to fight for me?
Duryodhana सोच रहे थे कृष्ण क्या फायदा अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे.
And Arjuna was thinking, what do I need armies if I have Krishna, then I have everything.
अर्जुन सोच रहे थे मुझे सेना क्या जरूरत है अगर कृष्ण है तो सब कुछ है.
So Krishna took that promise. I will not lift a weapon and I will not fight.
तो कृष्ण ने यह वचन दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और लड़ूंगा भी नहीं. तो उन्होंने पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के सारथी के पद को स्वीकार किया.
वेरी नम्र पोजिशन,
बहुत ही नम्र पद है ये.
टू बी द चैरियट ड्राइवर ऑफ हिज डिवोटी,
अपने भक्त के सारथी बनना.
अर्जुन स्पोक टू कृष्ण,
अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले,
प्लीज bring my chariot, O Krishna, to the center of the battle.
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए.
I want to see who has assembled on both sides to fight this war.
इस युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं को मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ.
Krishna brought his chariot to this place that we are sitting.
कृष्ण अपने रथ को इसी स्थान पर जहां पर हम बैठे हैं वहां पर ले आए.
अर्जुन, कृष्ण said to Arjuna, now you look and see who has assembled for this great war.
कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभी आप निरीक्षण करिए कि कौन कौन इस युद्ध में आए हैं.
Arjuna looked on both sides.
अर्जुन ने दोनों तरफ देखा.
Being a very soft hearted Vaishnava, he was very, very much disturbed by what he saw.
और एक वैष्णव नरम हृदय होने के कारण वो बहुत विचलित हुए ये सब देखकर.
He saw that on either side were friends, relatives, and well-wishers who he loved.
उन्होंने देखा दूसरी तरफ दोनों तरफ उनके मित्र रिश्तेदार वो सब थे जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे.
On the side of the Kurus, his enemies, he had to fight. He saw his most beloved teacher, Dronacharya.
और कुरु की ओर देखा उन्होंने उनके प्रिय गुरु द्रोणाचार्य.
And Bhishma, his grandfather.
और अपने पितामह भीष्म को देखा.
And many other great and noble souls.
और अनेक महात्माओं को वहां पर देखा.
He became confused.
वो भ्रमित हो गए.
Bewildered.
वो मोहित हो गए.
He did not want to fight.
वे लड़ना नहीं चाहते थे.
He presented so many very logical, philosophical, and shastric arguments to Krishna why this fight cannot be.
उन्होंने शास्त्र के आधार पर, तर्क के आधार पर अनेक कारण बताए कि लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए.
Even if we win this war, how will we enjoy if our gain is through the shedding of the blood of people we respect and love?
वो कहने लगे अगर हम युद्ध में जीत भी जाएंगे तो हम कैसे आनंद लेंगे जब हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उन्हीं का खून बहाया जाएगा.
When these great personalities die in a battlefield, their wives, who are innocent, will suffer the fate of being widows.
और जब लड़ाई में योद्धा मारे जाएंगे तो उनके पत्नी जो कि निर्दोष हैं वो विधवा हो जाएंगी.
Women are unprotected, they will be exploited by unscrupulous men.
और जब स्त्री की रक्षा नहीं की जाएगी तो जो पुरुष है वो उसका शोषण करेंगे.
That will bring about unwanted population.
और फिर अवांछित प्रजा की उत्पत्ति होगी.
Such unwanted population will not perform samskaras or live by religious principles.
ऐसे व्यक्ति या संस्कार या धार्मिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे.
They will create havoc in society. The whole world will be ruined.
और पूरे समाज में भ्रांति पैदा कर देंगे और पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा.
I will not fight.
मैं लड़ूंगा नहीं.
Arjuna was shaking.
अर्जुन कांप रहे थे.
Crying.
वो रो रहे थे.
His body became pale.
और उनका शरीर फीका पड़ गया.
Mouth became dry.
दूध सूख गया.
His hairs were standing on end in grief.
और दुख के मारे उनके शरीर के बाल खड़े हो गए.
No longer hold his Gandiva bow.
वो गांडीव धनुष को धारण नहीं कर पा रहे थे.
In that state, he turned to Krishna.
और उस अवस्था में वो कृष्ण की ओर मुड़े.
With folded palms.
हाथ जोड़कर.
कार्पाण्य तो सौ पहता सुबाबा पृच्छामि तुम धर्म समुच्चय यत्त्वय सुनिश्चितं गुहिता मे शिष्यास्ति हम सारी मंत्रों पर पाना. I am confused about my duty.
मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ.
I have lost all composure due to weakness.
और कमजोरी के कारण मैं सब अपनी स्थिति को भूल गया हूँ.
इन दिस कंडीशन आई डू नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग.
स्थिति में मुझे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है.
व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन.
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए.
इन दिस कंडीशन ऑफ कृष्ण प्लीज इंस्ट्रक्ट मी.
इस अवस्था में है कृष्ण कृपया मुझे मार्गदर्शन करिए.
आई एम सरेंडर टू यू.
मैं आपके प्रति समर्पित हूँ.
आई एम योर डिसाइपल.
मैं आपका शिष्य हूँ.
In this place where we are sitting today, Krishna smiled upon Arjuna. And he spoke. Sri Bhagavan Uvacha.
Sri Bhagavan Uvacha.
When Krishna spoke, it was not like you or me speaking.
Jab Krishna bol rahe hain, aisa nahi ki main ya aap bol rahe hain.
It is the absolute truth, the supreme personality of Godhead speaking.
Wo param satya Bhagavan bol rahe hain.
असोचनंद सोचस्व प्रज्ञवार सुभाष से गता समगता से सोचती खानता. अर्जुन while speaking learned words, you are lamenting for that which is not worthy of grief.
अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन तुम पढ़े लिखे शब्द बोल रहे हो उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए.
Those who are wise lament for neither the living nor the dead.
जो बुद्धिमान है वो जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते.
Then Krishna, in second chapter of Bhagavad Gita, explained the nature of the soul.
तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वभाव को समझाया.
जायते म्रियते वा कदाचिन नयान भूप भावित वान अभूया अजो नित्य शाश्वत यन पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर. For the soul there is neither birth nor death.
आत्मा के लिए न जीवन न जन्म है न मृत्यु है.
So having once been does it ever cease to be.
और एक बार होने के बाद कभी उसका नाश नहीं होता.
The soul is eternal.
वो शाश्वत है.
Undying.
उसकी मृत्यु नहीं होती.
Primeval.
और वो आदि है.
It is not slain when the body is slain.
शरीर के नाश होने पे भी उसका नाश नहीं होता.
संसिजनानि यथा विहाया न बालिक नाति नरोपराणि तथा सरिदानि विहाय च नानि अन्नाति सम्यानि दवानि देहि. As a person puts on new clothes and gives up old ones, similarly, one accepts new material bodies, giving up the old and useless ones.
जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से व्यक्ति पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को स्वीकार करता है.
So cannot be killed by any weapon.
आत्मा को अस्त्रों के द्वारा मारा नहीं जा सकता.
Cannot be burnt by fire, withered by the wind, or destroyed by water.
और अग्नि के द्वारा पानी के द्वारा या हवा के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता.
The soul is transcendental.
वो दिव्य है.
It is spiritual.
वो आध्यात्मिक है.
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमरोम यवनम चरा तथा देहांतरा प्राप्य धीरस्तत्रा. The embodied soul passes through boyhood, youth, and old age. Similarly, the soul accepts a new body at the time of death.
इस प्रकार इस शरीर में आत्मा बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे आता है. उसी प्रकार से मृत्यु के समय वो दूसरे शरीर को स्वीकार करता है.
Krishna explains to Arjuna how the soul is entangled by this material nature.
कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति में जीवात्मा फंस जाता है.
Srila Prabhupada and our Acharyas explained that Bhagavad Gita is the most perfect synthesis of all transcendental knowledge.
Srila Prabhupada and Acharya batate hain ki Bhagavad Gita sare divya gyan ka sankalan hai.
It is called Gita Upanishad.
Isko Gita Upanishad kaha jata hai.
And it is the most fundamental and essential of all spiritual literatures.
Sab adhyatmik shastron mein sabse mool shastra Bhagavad Gita hai.
It deals essentially with five subjects.
उसमें पांच विषयों का वर्णन आता है.
ईश्वरा or the supreme controller कृष्ण.
पहला है ईश्वर या परमेश्वर श्री कृष्ण.
द जीवात्मा द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटी.
दूसरा है जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है.
प्रकृति.
तीसरा है प्रकृति.
द मटेरियल नेचर
यह भौतिक प्रकृति.
द इंफीरियर एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड
वो भगवान की निम्न श्रेणी की बहिरंग शक्ति.
Kala, or eternal time.
चौथा है काल या समय.
And karma, or action.
पांचवा है कर्म.
Ishvara or Krishna is the supreme controller who has manifested everything by his own sweet will.
ईश्वर जो परमेश्वर कृष्ण है जिन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ प्रकट किया है.
He creates all living entities simultaneously one and different from himself.
और वो सब जीवात्माओं को सृजन करते हैं अपने से एक और अलग भी एक ही समय.
Qualitatively one, eternal, full of knowledge and full of bliss, but quantitatively a fragmental part of Krishna.
गुणात्मक रूप से एक सच्चित आनंद लेकिन मात्रा में वो भगवान के अंश के रूप में.
Every living entity is eternal servant of Krishna.
हर एक जीवात्मा कृष्ण का नित्य सेवक है.
And within the heart of every living entity is pure love for Krishna.
और हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है.
That transcendental exchange of love is what every living being is created to enjoy.
जो ये दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है उसी के लिए जीवात्माओं को रचना की गई है.
But in order for there to be love, there must be free will.
लेकिन प्रेम के होने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है.
And those who continue to misuse their free will, this prakriti or material nature has been created.
जो लोग अपनी इच्छा का गलत उपयोग करते हैं उनके लिए ये भौतिक प्रकृति का निर्माण किया गया है.
Material nature is that place where everything is trying to be lord of all they survey.
भौतिक जगत ये स्थान है जहाँ पर हर एक व्यक्ति यह स्वामी बनना चाहता है जो कुछ भी दिखाई पड़ता है.
Trying to compete with the lord by being proprietor and enjoyer.
भगवान से यह स्पर्धा करना चाहते हैं मालिक बनने के लिए और भोक्ता बनने के लिए.
Everyone wants to be glorified.
हर एक व्यक्ति अपने खुद का गुणगान करना चाहता है.
That is the exclusive position of Krishna.
वास्तव में ये कृष्ण का पद है.
And this material nature, how does it continually or perpetually entangle people in this illusion?
और कैसे भौतिक प्रकृति लोगों को इस भ्रम में बनाए रखती है?
If we want to get out of the mess, we have to understand what is the mess we're in.
अगर हम झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले झंझट को समझना चाहिए.
Therefore, Krishna explains authoritatively in Bhagavad Gita.
तो इसलिए बड़े अधिकार के साथ भगवान श्री कृष्ण इस तत्व को भगवद गीता में समझाते हैं.
This material nature is composed of three modes of material nature.
भौतिक प्रकृति जो तीन गुणात्मक रूप से है.
प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वशा अहंकारा विमूतात्मकारितानीति मान्यते. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are actually being carried out by nature itself.
जो मोहित जीवात्मा है वो मोह के कारण सोचता है कि मैं ही करता हूँ उन कार्यों का जो वास्तव में प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं.
There is tamoguna, rajoguna and sattvaguna.
तीन गुण है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण.
And everything within this material creation can be categorized under the influence of these three modes of material nature.
और जितना भी भौतिक जगत में है वो ये तीन गुणों के अंदर माना जा सकता है.
The mode of ignorance causes us to be very lethargic and sleepy.
The tamoguna hai usse hame bahut jo hai neend aati hai aur aalsi hote hain.
Cruel
aur krur banate hain.
Violent
hinsatmak
prone toward intoxications.
Nashili madak cheezon ke prati mudte hain.
The mode of passion influences to be very active.
रजोगुण के कारण हम बहुत क्रियाशील हो जाते हैं.
To accumulate more and more and more and more wealth.
और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हम एकत्रित करना चाहते हैं.
And enjoy more and more of the pleasures of the world.
और दुनिया के आनंदों का ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं.
Especially the pleasure of sex.
विशेष करके मैथुन जीवन का आनंद.
Which is a misuse of the sacred principle of procreation, which is meant to be utilized for the service of God.
जो कि वास्तव में भगवान की सेवा के लिए संतान उत्पत्ति के उपयोग किया जाना चाहिए.
People are mad with passion.
लोग रजोगुण के कारण पागल हो जाते हैं.
And maddened by ignorance.
और अज्ञान के कारण पागल हो जाते हैं.
There is sattvaguna.
और फिर सत्वगुण.
The mode of goodness, where people are very become influenced by compassion.
जिससे लोग दया के द्वारा भावना से भर जाते हैं.
Cleanliness.
सफाई की भावना.
चैरिटेबलनेस
दान देना.
सो भगवद गीता टीचेस अस वी हैव टू स्ट्राइव टू लिव इन द मोड ऑफ गुडनेस.
भगवद गीता हमें समझाती है कि हमें सत्वगुण पे आने का प्रयास करना चाहिए.
बट दैट्स नॉट एनफ.
लेकिन वो सब कुछ नहीं है.
देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स.
14 लोक हैं.
Divided into three basic categories: the upper planets, the middle planets, and the lower planets.
उनको तीन श्रेणी में बांटा गया है. एक उच्च लोक, मध्य लोक और बाताल लोक.
The upper planets were for those who are in the mode of goodness, who can enjoy incredible amounts of happiness.
जो उच्च लोक है वो बहुत सत्वगुण के लोगों के लिए है जो कि बहुत सारा भौतिक सुख भोग कर सकते हैं.
मिडल प्लैनेट्स आर अ प्लेस ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस.
और जो मध्य लोक है वो संघर्ष की भूमि है.
एंड द लोअर प्लैनेट्स आर अ प्लेस ऑफ utter nothing but misery and suffering.
और जो नीचे के लोग हैं वो दुखों से भरे हुए स्थान हैं.
So through the mode of ignorance, people go to the lower planets.
और तमोगुण से व्यक्ति नीचे के लोकों में जाते हैं.
Mode of passion, people continue struggling in these middle planets.
और रजोगुण में लोग संघर्ष करते रहते हैं मध्य लोक में.
Mode of goodness, you can enjoy the higher planets.
और सत्य लोक से आप ऊंचे लोकों का आनंद ले सकते हैं.
But Krishna tells Arjuna, "Tribhir gunamaya bhavaya," that these three modes of material nature, I am above them all.
भगवान बताते हैं कि तीन गुण हैं लेकिन मैं इन तीनों से परे हूँ.
त्रिगुण्य विषय आवेर त्रिगुण्य प्रवर्जन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वष्टो नियोग क्षेमात्मभान. The Vedas mostly deal with these three modes of material nature.
भगवान बताते हैं कि वेदों में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया गया.
Rise above them, Arjuna.
हे अर्जुन, इनसे ऊपर उठो.
Be transcendental to these modes of material nature.
इन गुणों से दिव्य हो जाओ.
And be established in the truth of the self.
और आत्मा के सत्य में अपने आप को स्थापित करो.
आब्रमा भुवनालोका पुनरावर्तनोजन मामुपेतितु कुंते पुनर्जन्मन विद्यते. From the highest planet Brahmaloka to the lowest Patalaloka, they are all places of misery, Arjuna.
सबसे ऊंचे ब्रह्मलोक से लेकर पाताललोक तक सब दुखों के स्थान है अर्जुन.
They are all places of birth and death.
सब जन्म और मृत्यु के स्थान है.
Come to my abode.
मेरे धाम में आ जाओ.
Never take birth and suffer again.
और इस दुनिया में फिर से दुख मत भोगो.
So the three modes of material nature are called gunas, which is sometimes translated as qualities and sometimes as ropes.
ये तीन गुण हैं. कभी कभी इनको गुण बोला जाता है और कभी कभी इनको रस्सी बांधा जाता
है. Just like ropes, they bind us to this material existence.
जैसे रस्सी बांधती है वैसे हमको ये चीजें जो हैं भौतिक अस्तित्व से बांध के रखते हैं.
And human life is not meant simply to select which rope is going to pull us the furthest.
मानव जीवन इसलिए नहीं है कि हमें कौन से रस्सी चुननी है.
It's meant with the sword of knowledge to cut these ropes.
ज्ञान की तलवार से इन रस्सियों को काटना है.
The three modes of material nature are activated by kala rupa or time.
और ये तीन गुण जो है वो काल के द्वारा कार्य करने से शुरू करते हैं.
Eternal time.
जबकि शाश्वत काल है.
All devouring time.
जो सबको नष्ट करने वाला काल है.
In the 11th chapter of Gita, Krishna gave us a visualization of time.
11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण काल का एक रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर करते हैं.
यूनिवर्सल फॉर्म.
और वो है भगवान का विराट रूप.
डिवाइन एवरीवन.
सबको खाते हुए.
इवन द ग्रेटेस्ट हीरोज एंड कॉन्करर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल बीइंग डिवाउर्ड बाय टाइम.
और जो बहुत बड़े बड़े विजेता भी हैं वो भी काल के द्वारा ग्रसित हैं.
व्हाट इज हिस्ट्री.
इतिहास क्या है.
हिस्ट्री इज सिंपली द स्टोरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डेड पीपल.
और इतिहास क्या है. मरे लोगों की कहानी. ये सत्य है.
People study history, but they don't think about it. It's obvious. Everyone we read about, everyone we talk about is dead.
लोग इतिहास पढ़ते हैं लेकिन इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो सब लोग मर गए हैं.
Some were success, some were failure.
कोई सफल कोई असफल.
Some accomplished great things.
कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें की.
Some performed dastardly, wicked deeds.
कोई लोगों ने बहुत असुरिक कार्य किए.
But they're all dead.
लेकिन सब मर गए.
And when they died, people either laughed or cried.
और जब वो मरे तो कुछ लोग हंसे कुछ लोग रोए.
Yudhishthira Maharaj, he considered this the most wonderful thing going on in the whole planet.
Yudhishthira Maharaj ने कहा कि यही सबसे बड़े आश्चर्य की चीज है पूरे लोक में.
That a whole history of everything we read about, everyone's dead.
कि सारा इतिहास जो हम पढ़ते हैं सब लोगों के बारे में सब मर गए.
And around us we see everyone's dying.
और हमारे आमने सामने हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है.
Look at your parents, they're getting old.
आपके माता पिता को देखिए वृद्ध हो रहे हैं.
Look in the mirror, you're getting old.
और आप आईने में देखो तो आप भी जो बूढ़े हो रहे हो.
What does that old mean?
वो क्या है.
That means you're being devoured by time.
इसका मतलब काल के द्वारा आप खाए जा रहे हो.
Little by little.
धीरे धीरे.
Marching toward death.
आप मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं.
No one can escape.
कोई भाग नहीं सकता.
So this time element, which is bringing everyone to death, is activating the three modes of material nature.
ये जो काल है वो तीन गुणों को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित कर रहा है.
And within this condition,
where the Supreme Lord, who is the controller of the whole material nature,
is living within the heart, watching everything and everyone.
और इसी स्थिति में भगवान जो है वो हृदय में जो है वो सब कुछ देख रहे हैं
मयाध्यक्ष प्रकृति सूर्य तेसा चराचर हेतु नानी लोग कौन थे या जगत भी परिवार देते कृष्ण सेज इन गीता दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस होल मटेरियल
भगवान गीता में बताते हैं कि सारे प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूं
एंड हाउ द इंडिविजुअल सोल द जीवात्मा is responding to the influences of material nature being activated by time
aur kaise jeevatma jo hai prakriti ke gunon pe kaise wo prabhavit hota hai jo ki kal ke prabhav se hai
those responses bring about action
aur jo unka jo prabhav hota hai usse karma hota hai
that action is called karma
usi ko karma kehte hain
in everything you do
और हर एक चीज जो आप करते हैं
एवरीथिंग यू स्पीक
जो भी आप बोलते हैं
क्रिएट्स ए कार्मिक बॉन्डेज
उससे जो है कर्मों का एक बंधन पैदा होता है
वेदर विल बी अ रिएक्शन
और फिर उसका फल होता है
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन
हर एक कर्म के लिए जो है उसका एक फिर फल होता है
दिस इज द लॉ ऑफ नेचर
ये प्रकृति का नियम है
व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ नेचर इट इज नॉट लाइक द लॉज ऑफ दिस वर्ल्ड
ये जब हम प्रकृति के नियम बोलते हैं दुनिया के नियम का जैसा नहीं है वो
द मैन मेड लॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वी कैन ब्रेक दैट मैटर फॉर कॉट वर पनिश्ड
और प्रकृति ये संसार के नियम है आप तोड़ सकते हैं और फिर पकड़े जाएंगे तो सजा होगी
बट इफ वी आर इंटेलिजेंट इनफ और इफ वी हैव इनफ मनी और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स लाइव्स वी कैन ब्रेक द लॉज एंड नॉट हैव टू सफर द रिएक्शन ऑफ दीज मैन मेड लॉज
लेकिन अगर हमें पैसा है या हम बुद्धिमान है तो हम नियमों को तोड़ने के बाद भी बच सकते हैं बिना कोई फल प्राप्त किए
बट यू कैन नॉट ब्राइब कृष्ण
इन कृष्ण को रिश्वत नहीं ले सकते
एंड ही इज द सुपर सोल इन योर हार्ट
वो आपके हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास कर रहे हैं
इन एंड बिटवीन एवरी एटम
हर एक कण कण में
वॉचिंग थ्रू द सन एंड द मून एंड ऑल द स्टार्स
सूर्य और चंद्रमा और तारों के द्वारा वो सब देख रहे हैं
cannot escape the eye of Krishna.
Krishna ki aankhon se aap bach ke nahi nikal sakte.
So whatever you do, whatever you say, the laws of nature will give you a reaction.
Jo bhi aap karte hain, jo kuch bhi aap bolte hain, aapko prakriti ke niyam ka aapko phal bhugatna padega.
So Bhagavad Gita is explaining what kind of actions bring about what kind of reactions.
Bhagavad Gita samjhati hai ki kya karyon ka kaisa prakar ka phal hota hai.
But what is Krishna's conclusion of Gita?
लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं गीता के अंत में
सर्व धर्म प्रचेज मामेकम शरणम प्रच अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षा ईश्वरि मासुच abandon all varieties of occupational attachments and just surrender to me
भगवान बोलते हैं सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ
I will deliver you from all sins.
मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा
Do not fear.
डरो मत
Krishna explains in Gita, karma nivedikarashte, that everyone must perform their action, their work.
भगवान गीता में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्म करना है
one should not be attached to the fruits of their action.
लेकिन उस फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए
Nor should one be attached to not doing one's duty.
और व्यक्ति को अपने कर्तव्य न करने के प्रति भी आसक्ति नहीं रहनी
so
चाहिए
what should one do?
हमें क्या करना चाहिए
यत् करोषि रसनासि यच्चोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्ति तत् कुरु शुणोतार्पणम् Whatever you do should be done as an offering to Krishna.
जो कुछ भी आप करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए
That is knowledge.
वो ज्ञान है
That is the only real method of liberation.
और यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है
पत्रम पुष्पम पलम तो यम यो मे भक्त प्रयाति तरहम भक्ति पारणम अश्नामि प्रयतात्मना And anyone can follow this principle.
और कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन कर सकता है
Offer me even a little water, a fruit, a leaf, or a flower.
मेरे को पत्ता फल जल कुछ भी अर्पण करें
If it is given with devotion, I accept.
अगर भक्ति से दिया है तो मैं स्वीकार करता हूँ
And if I accept what you offer, that is the perfection of your life.
और अगर जो आपने अर्पण किया अगर मैं स्वीकार करता हूँ तो आपका जीवन सफल है
अंत काली चमेवा स्मरण मक्वा कलेवरा या प्रयाति सुमदभाव हम जाति नस्त्र संशया यम यम वापि स्मरण बाबाम चिजत्यंते कलेवरम
थम थम एवैत कौन सदा तक भाव भाव
वेरी इंपॉर्टेंट
ये बहुत महत्वपूर्ण है
What we remember at the time of death, that we will attain without fail.
जो हम मृत्यु के समय स्मरण करेंगे वो निश्चित हमें प्राप्त होगा
And death can come at any moment.
और मृत्यु कभी भी आ सकती है
One who remembers me at the time of death, Krishna says, will attain me. That is for certain.
जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा ये निश्चित है
So this is the essence of Gita.
ये गीता का सार है
That our life is meant as an offering of devotion to Krishna.
कि हमारा जीवन जो है वो कृष्ण को अर्पण करना है
मान मना बलो मा भक्तो मा जय श्री नमस्कार मामे वैश्य श्री सत्यम ते प्रति जन टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण
हमेशा कृष्ण को स्मरण करो
टू बी कृष्णस डिवोटी
कृष्ण के भक्त बनना
वर्शिप हिम एंड ऑफर आवर होमेज अनटु हिम
उनकी आराधना करना और उनको
दिस वे कृष्ण सेज यू विल कम टू मी विदाउट फेल
ऐसा करने से आप निश्चित मेरे को प्राप्त होंगे ऐसा कृष्ण बताते हैं
कृष्ण हैज रिवील्ड द वेरी सीक्रेट ऑफ द एसेंस ऑफ लाइफ हियर इन कुरुक्षेत्र एट ज्योतिसर
यहां पर कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में भगवान ने जो है जीवन का रहस्य प्रदर्शित किया है
But who is willing to follow the principles of Bhagavad Gita?
लेकिन गीता के मूल सिद्धांतों का कौन पालन करना चाहता है?
Bhagavad Gita is not simply meant as a theoretical study. It is a way of life.
भगवद गीता एक खाली एक अध्ययन के लिए नहीं है बल्कि जीवन की पद्धति है शैली है
Srila Prabhupada explains if you want to understand Gita you must be in the spirit of Arjuna.
अगर आप गीता को समझना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की भावना में रहना चाहिए
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तमम यू मस्ट एक्सेप्ट कृष्ण इज गॉड
आपको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए
यू मस्ट बिकम हिज डिवोटी
और उनका भक्त बनना चाहिए
एंड यू मस्ट रियलाइज दैट यू आर इग्नोरेंट
और ये जानना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ
एंड डेस्परेटली इन नीड ऑफ हिज मर्सी
और आप उनकी कृपा को चाहते हैं
आज विदीप प्रणिपाति न परिप्रश्न से भया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न स्तुति दर्शन हाउ डू वी अप्रोच कृष्ण
हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं
वी अप्रोच हिम थ्रू हिज वर्ड्स
उनके शब्दों के द्वारा
एंड हिज वर्ड्स आर एम्बॉडीड बाय हिज डिवोटीज
और उनके शब्द जो हैं वो उनके भक्तों के द्वारा प्रकट होते हैं
देयरफॉर वी अप्रोच हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंक्वायर सबमिसिवली
इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं नम्रता से जिज्ञासा करते हैं
वी सबमिट आवरसेल्व्स एंड रेंडर सर्विस
हम उनको समर्पित करते हैं सेवक के रूप में
द सेल्फ रियलाइज्ड सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज ऑन यू बिकॉज ही इज सीइंग कृष्ण
जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति है वो आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को देखा है
एवं परम्परा प्राप्तम इदम रजाशया विदु कृष्ण सेज दिस वी मस्ट अप्रोच गुरु इन डिसिपलिक सक्सेशन
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गुरु को परम्परा में स्वीकार करना चाहिए
And the guru who is speaking in disciplic succession simply repeats Bhagavad Gita as it is.
जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं वो भगवद गीता को यथारूप पेश करते हैं
Srila Prabhupada was asked when he was in America, can you recommend the Bhagavad Gita for me to read by one American lady?
एक अमेरिकन स्त्री ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मुझे बता सकते हैं भगवद गीता का कौन सा अंग्रेजी अनुवाद मैं पढ़ूं?
There were hundreds of Bhagavad Gitas in English language.
उस समय जो है हजारों अनुवाद थे अंग्रेजी भाषा में.
Not a single one says that Krishna is the supreme personality of Godhead.
उसमें से कोई एक भी ये नहीं कहता कि कृष्ण भगवान है.
Not a single one explains that you have to follow the path of bhakti.
और उसमें से कोई भी ये नहीं सिखाता कि भक्ति के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए.
Krishna tells Arjuna, because you're my bhakti, you can understand. Otherwise, no one can understand.
भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्योंकि आप मेरे भक्त हो इसलिए आप समझ सकते हो नहीं तो कोई नहीं समझ सकता
भक्तियात्मन शक्या महामे वाम विदो अर्जुनम ज्ञातम द्रष्टम छ तत्व प्रवेशम छ परंतपा Only through undivided devotion can I be understood as I am.
भगवान बोलते हैं कि सिर्फ जो अनन्य भक्ति के द्वारा मैं समझा जा सकता हूँ जैसा मैं हूँ
भक्ति माम अभी जानाती यवन यशस्मिता वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण थ्रू एनी अदर मीन्स एक्सेप्ट डिवोशन
भक्ति के अलावा और कोई दूसरे तरीके से हम कृष्ण को नहीं जान सकते
ओनली थ्रू डिवोशन कैन वी एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड
और सिर्फ भक्ति के द्वारा हम कृष्ण के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं
देयरफॉर श्री द प्रभुपाद कमेंस्ड टू ट्रांसलेट भगवद गीता
इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप का अनुवाद करना शुरू किया.
As Krishna spoke it here in Jyotisara Kurukshetra.
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ज्योतिसर में सुनाया.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he personally, by his example, along with his associates, taught us how to live Bhagavad Gita.
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सहचारों के साथ हमें सिखाया कि कैसे भगवद गीता के अनुसार जीवन बिताना चाहिए.
श्री चैतन्य महाप्रभु,
श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है?
He is the very speaker of Bhagavad Gita.
वो भगवद गीता के ही वक्ता है.
Who descends in the world to teach us how to follow his own teachings.
वो दुनिया में इसलिए अवतरित होते हैं हमें सिखाने के लिए कि कैसे स्वयं की शिक्षाओं का हमें पालन करना है.
Therefore he comes in the role of a devotee.
इसलिए वो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं.
To teach us how to be devotee.
ये दिखाने के लिए कि कैसे भक्त बनना है.
By being very humble.
नम्र बनने के द्वारा.
By approaching guru.
गुरु के शरण में जाने के द्वारा.
By inquiring submissively.
नम्रता से जिज्ञासा करने के द्वारा.
Serving Vaishnava.
वैष्णव की सेवा करते
हुए. By showing compassion, by preaching to others.
दया की भावना से दूसरों को प्रचार करते हुए.
By worshiping the deity.
विग्रह की आराधना करने के द्वारा.
By reading the Gita and the Bhagavad.
गीता और भागवत के अध्ययन के
द्वारा.
नियमित पूर्वक.
By visiting holy places.
तीर्थ यात्रा करने के द्वारा.
And mostly by always thinking of Krishna.
हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं.
The performance of the Yuga Dharma.
युग धर्म का पालन के द्वारा.
Chanting of the holy name.
भगवान के नामों का कीर्तन.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे.
Loudly.
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
Srila Prabhupada explains, unless we're tired of the suffering of material life, unless we're frustrated by the futility of mundane thinking, we cannot seriously approach Bhagavad Gita.
Srila Prabhupada samjhate hain ki jab tak hum is bhautik duniya se tang nahi aa jate tab tak hum Bhagavad Gita ke kareeb nahi pahunch sakte.
Bhagavad Gita is the mercy of Krishna.
Bhagavad Gita jo hai wo Krishna ki kripa hai.
The most profound knowledge of the absolute truth, the world we live in, who we are and the predicament we're in is revealed.
और सबसे बड़ा गहरा ज्ञान हम क्या हैं और कैसे हम इस दुनिया में फंसे हैं वो सब समझाया गया है.
But most of all, Bhagavad Gita teaches us how to live in this world in pure devotion to the Lord.
और भगवद गीता हमें समझाती है कि कैसे भगवान के प्रति सेवा भावना से भक्ति भावना से हमें रहना है.
When Krishna concluded Gita's teachings, he told Arjuna, "Now you have heard what I speak. Do as you like."
Gita puri sunane ke baad Bhagwan Krishna ne Arjun se kaha, "Ab jo ichha ho, wo karo."
Arjuna said, "Krishna, you are the Lord."
Arjuna ne kaha, "Krishna, ab swami ho."
"I will do your will."
"Main aapki ichha ko puri karunga."
"I will fight for you."
"Main aapke liye yuddh karunga."
Similarly,
उसी तरीके से.
It is very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Bhakti means to serve.
भक्ति का मतलब सेवा करना.
Bhakti means to fight against delusion.
माया के विरुद्ध युद्ध करना.
The illusions that are within us and the illusions that are without outside.
जो हमारे अंदर हैं और बाहर हैं सब प्रकार के भ्रम.
We must be willing to fight.
हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए.
And by our Guru Parampara, the teachings of Gita are revealed how to fight against delusion.
और गुरु परंपरा में भगवद गीता की शिक्षा बताया जाता है कैसे माया के विरुद्ध युद्ध करना है.
And that is the subject matter of this Krishna consciousness movement.
और ये कृष्ण भावना आंदोलन का विषय है.
In this age of Kali, Krishna has descended in His name.
इस कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम और रूप में प्रकट हुए हैं.
To dispel ignorance.
अज्ञान को दूर करने के लिए.
To destroy the kurus within the Kurukshetra of our hearts.
हमारे हृदय के कुरुक्षेत्र के कुरुओं का समूल नाश करने के लिए.
Therefore, always remember Krishna.
इसलिए हमेशा कृष्ण का स्मरण करें.
Chant His holy name.
उनके नामों का कीर्तन करें.
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चाद्रतावृता नामस्यन्तश्च माम भक्त्या यति योक्तम् भाषितम्. Krishna tells us, always chant my glories.
भगवान बताते हैं कि हमेशा मेरे गुणों का गान करो.
So we are so fortunate. We have come here to Kurukshetra.
हम इतने सौभाग्यशाली हमें कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हैं.
Very, very ancient place of pilgrimage.
बहुत ऐतिहासिक तीर्थस्थल है ये.
A place since time immemorial people would come to perform sacrifice.
अनादिकाल से लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए एकत्रित होते हैं.
We are reading the first verse of Gita today.
आज हम गीता के प्रथम श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं.
Dhritarashtra was not happy about this venue for the war.
Dhritarashtra जो लड़ाई का जो स्थान चुनना था उसे खुश नहीं थे.
That they're fighting this battle at Kurukshetra.
सुना कि लड़ाई कुरुक्षेत्र में हो रही है.
धर्म क्षेत्र.
जो कि धर्म क्षेत्र है.
It's the field of dharma.
वो धर्म की भूमि है.
So many sacrifices, so many rishis and sages have purified and sanctified this place.
कितने यज्ञ और कितने ऋषि मुनियों ने इस स्थान को पवित्र बनाया है.
Holy places have great, great power.
पवित्र स्थानों में बहुत दिव्य शक्ति होती है.
And Dhritarashtra knew that his sons represented a dharma.
और जानता था कि मेरे पुत्र अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
And the Pandavas represent dharma.
और पांडव धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
Therefore, this Kurukshetra is the wrong place.
इसलिए कुरुक्षेत्र उनके लिए गलत स्थान है.
Better if it was fought in Bombay or
ज्यादा अच्छा था बॉम्बे में लड़ाई होती है कहते
हैं. न्यूयॉर्क
या न्यूयॉर्क में.
लंडन शिकागो वन ऑफ दीज प्लेसेस.
लंडन शिकागो जैसे कोई
दुर्योधन वुड हैव गॉटन बेटर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू फाइट.
दुर्योधन को ज्यादा शक्ति मिली लड़ाई करने के लिए.
कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. Dhritarashtra knew in his heart of hearts that Krishna was the supreme personality of Godhead.
अपने हृदय में धृतराष्ट्र जानते थे कि कृष्ण जो है वो भगवान है.
And that he would lose everything.
और वो सब कुछ जानते हैं.
But due to the influence of the bad association of his son, he could not do the right thing.
अपने पुत्रों के कुसंग के कारण वो सही चीज को नहीं कर पाए.
Association is very important.
संघ बड़ा महत्वपूर्ण है.
Without association of devotees, Rupa Goswami says you cannot follow bhakti.
Rupa Goswami बताते हैं भक्तों के संघ के बिना आप भक्ति का पालन नहीं कर सकते.
चैतन्य महाप्रभु was asked, what is a devotee?
चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था भक्त कौन है.
सत्संग त्याग वैष्णव चार. He said a devotee is one who associates with devotees.
कि भक्त वो है जो दूसरे भक्तों का संग करता है.
And avoids the association of people who are too much materialistic and addicted to sense gratification.
और जो भौतिक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की तरह झुके हुए हैं उनके संग से जो दूर रहता है वो भक्त है.
In that association we're protected.
उस संग में हमारी रक्षा होती है.
In that association our intelligence remains strong.
और ऐसे संग में हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली होती
है. To make proper discrimination.
जिससे कि हम भेद कर सकें.
And choose सेवा टू कृष्णा rather than exploitation of our senses and mind.
जहां से हम इंद्र तृप्ति के बजाय कृष्ण की सेवा को चुन सकते हैं.
We come here to Kurukshetra to reconfirm and reinforce our faith.
हम कुरुक्षेत्र में आते हैं फिर से अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए.
Our dedication.
और हमारे समर्पण की भावना को.
To honor and respect Vaishnavas.
वैष्णवों के प्रति आदर भावना रखना.
To very, very, very seriously bathe our consciousness every single day by reading Shri Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam and these great scriptures.
भगवद गीता श्रीमद भागवत जैसे महान शास्त्रों में अपने बुद्धि को स्नान करवाना.
To firmly follow our vows.
और अपने प्रतिज्ञाओं को कठोरता से पालन करना.
To not engage in adharmic activities.
अधर्मिक कार्यों में नहीं लगना.
To very sincerely keep Krishna always within our hearts.
और अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को बनाए रखना.
By chanting his name.
उनके नामों का कीर्तन करो.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे.
spontaneously we try to say something about Bhagavad Gita.
स्वाभाविक रूप से हमने गीता के बारे में बोलने का प्रयास किया.
Please forgive me for any mistakes.
मेरी गलतियों पर क्षमा करें.
Just my very sincere and humble prayer that in this glorious holy site under the immortal banyan tree of Jyotisar that we may all, in the mood of servant of the servant of the servant, dedicate our existence to following in the footsteps of Arjuna by keeping Krishna's words as our life and soul.
इस वटवृक्ष के नीचे हम ये संकल्प करें कि हम अर्जुन के पदचिन्ह में चलते हुए समर्पण की भावना से दासों के दास बने.
Our beloved Guru Maharaj Srila Prabhupada was studying Bhagavad Gita once.
हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी भगवद गीता का अध्ययन करते.
He came upon one very important verse.
वो एक श्लोक के पास पहुंचे.
व्यवसायत्मका बुद्धिर एके गुरु बहुषा का हिनांत बुधा योगी व्यवसाय. Krishna says those who are on this path are resolute in purpose.
Krishna bolte hai ki jo vyakti is marg par hai unka nischay ek hota hai.
Their aim is one.
Unka ek hi nischay hota hai.
They are determined on the path of bhakti.
Wo bhakti ke marg par sudhrid rehte hain.
If you read the commentary of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur.
Fir unhone Vishwanatha Thakur ki tika ko padha.
He explains that this verse means we must make the order of the spiritual master our life and soul.
इस श्लोक का अर्थ है कि हम अपने गुरु की आज्ञा को अपना प्राण बना देना है.
That verse gave Srila Prabhupada great strength.
और इस श्लोक से प्रभुपाद जी को बहुत शक्ति प्राप्त हुई.
To go to the Western world with no money and no support from anyone.
और किसी से पैसा नहीं और किसी से हेल्प मदद नहीं लेते हुए वो पश्चिम के देश में गए.
At the age of 70,
70 वर्ष की उम्र.
Because that was the order of his spiritual master.
क्योंकि उनके गुरु की ये आज्ञा थी उनके लिए.
And it was that faith.
और ये उनका श्रद्धा विश्वास.
Faith in the teachings of Sri Bhagavad Gita.
गीता की शिक्षाओं में विश्वास.
That has given all of us entrance into the world of pure devotional service.
और इस विश्वास से ही हम सबको शुद्ध भक्ति के दुनिया में प्रवेश मिला है.
So let us very sincerely beg at the feet of Srila Prabhupada, our Guru Parampara, and Bhagavan Sri Krishna, to give us faith and determination to never give up the principles of Bhagavad Gita.
हमें प्रार्थना करनी है प्रभुपाद जी से और पूर्व आचार्यों से कि हमको श्रद्धा दें जिससे कि हम भगवद गीता के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़े.
नॉट ओनली प्रे बट बेग.
न केवल प्रार्थना करें बल्कि भीख मांगे.
बेग फॉर दैट वर्स.
उस कृपा के लिए भिक्षा मांगे.
दैट वी गेन द स्ट्रेंथ द डिटरमिनेशन एंड द फेथ टू नेवर गिव अप द पाथ ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज.
भक्तों के दासों के दास बनने के लिए मार्ग है उसको हम कभी त्याग नहीं करें इसके लिए श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ निश्चय दें.
Pray and pray and pray that we can bathe our mind in Gita and live, live by the Gita, which is like a torch of knowledge in this world of darkness.
Gita, जो कि ज्ञान शलाक के समान है अज्ञान के सागर में, उसके ऊपर हम जीवन बिता सकें इसके लिए बार बार हम प्रार्थना करें.
Because it is a world of danger at every step.
ये दुनिया में हर कदम पर खतरा है.
Not only physically, emotionally, but spiritually as well.
Not केवल भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी.
We have to have this determination to survive on the path of bhakti.
भक्ति के मार्ग को बने रखने के लिए हमें दृढ़ निश्चय अत्यंत आवश्यक है.
And that determination comes by our prayer.
और ये प्रार्थना से हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है.
And by the determination that comes from our prayer.
और ये दृढ़ निश्चय भी जो है ये प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त होते हैं.
थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री प्रभुपाद केम हियर इन द मिडल ऑफ द 1970s.
1970 के बीच में श्री प्रभुपाद जी यहां पर आए थे.
But that time, one very influential politician of India offered Srila Prabhupada some land at Brahmasarovar.
कोई बहुत मशहूर एक राजनीतिज्ञ ने ब्रह्मसरोवर के पास प्रभुपाद जी को जमीन देने के लिए वचन दिया.
Then Prabhupada came in the afternoon here to Jyotisar.
और दोपहर को प्रभुपाद जी इसी स्थान पर ज्योतिसर में आए.
And he ordered his disciples.
और शिष्यों को आज्ञा दी.
We should have a temple here.
हमें यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए.
At Jyotisar.
ज्योतिसर में.
At the very place where Gita is eternally being spoken.
जहाँ वो स्थान जहाँ पर गीता हमेशा बोली जा रही है.
Gita is being spoken to Arjuna by Krishna right here and now.
अभी यहाँ पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता बोल रहे हैं.
It is his eternal lila.
ये उनके नित्य लीला है.
Srila Prabhupada wanted a Bhagavad Gita university.
Srila Prabhupada ये भगवद गीता विश्वविद्यालय चाहते थे.
Here under the banyan tree in Kurukshetra.
ये इस वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र में.
So that people from all over the world could come in this environment of Dharma Kshetra, Kurukshetra, and be influenced to hear Gita.
इससे कि लोग आ सकें इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में और गीता की शिक्षाओं को पढ़ सकें.
And change their lives.
और उनके जीवन परिवर्तन हो सके.
And just very recently, Srila Prabhupada's desire is one step closer to fulfillment.
और अभी बहुत ही कुछ समय थोड़े समय पहले श्री प्रभुपाद जी की इच्छाएं पूर्ति होने में एक कदम और आगे बढ़ गए.
Just a few minutes walk from this holy banyan tree, a very beautiful plot of land was offered to the lotus feet of Srila Prabhupada by the government of Haryana.
हरियाणा सरकार ने यहाँ से पास में ही थोड़े ही कदम दूर पर एक बहुत सुंदर जमीन का इलाका दिया है प्रभुपाद जी के चरण.
कॉर्नर स्टोन फॉर कृष्णा अर्जुन टेम्पल वाज
एस्टैब्लिश्ड. और वहाँ पर उसकी नींव स्थापना की गई.
यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो देवतन तत्र श्री विजय उपतिय ध्रुव नीति नमति रमणा. Wherever there is Krishna and Arjuna, wherever is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the great archer, there is certain to be victory.
यहाँ पर कृष्ण हैं जो कि योगेश्वर हैं और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन हैं वहाँ पर विजय सुनिश्चित है.
Opulence,
ऐश्वर्य,
extraordinary power,
विशेष शक्ति,
morality and auspiciousness,
नीति और मंगलमयता.
That is my opinion.
ये मेरा मत है.
These are the final words of Bhagavad Gita.
ये भगवद गीता के अंतिम शब्द हैं.
If we always remember Krishna, our lives will be victorious.
अगर हम कृष्ण को हमेशा स्मरण रखें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा.
So we have our Sukadev Maharaj, who has been here in Kurukshetra for many years.
हमारे सुखदेव महाराज हैं कई वर्षों से कुरुक्षेत्र में निवास कर रहे हैं.
We have our Sakshi Gopal, who is also working very hard here in Kurukshetra.
Our Sakshi Gopal Prabhu bhi bahut mehnat kar rahe hain Kurukshetra.
The Singhal family donated this property for a temple.
Aur abhi jo mandir hai jahan par wo Singhal parivar ne donation diya hai building.
Heart of the city.
Jo ki shehar ke hriday mein beech mein.
You have all been there this morning.
Aap sab wahan subah the.
Radha Radha Kanta Mandir.
Iska naam hai Radha Radha Kanta Mandir.
And now, a beautiful plot of land given by government at Jyotisar.
And यहाँ पर अभी सरकार द्वारा ज्योतिसर में जमीन दिया गया.
So let us pray that Srila Prabhupada's desire be fulfilled.
हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी हो.
And in our own way, let us all, in our own places, try to be what Srila Prabhupada wants us to be.
और हम अपने अपने स्थानों में वो बनने का प्रयास करें जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम बने.
That will be our greatest fortune.
ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा.
And we can offer the greatest benefit to the whole society.
और पूरे समाज और दुनिया को हम इससे बड़ा लाभ प्रदान कर सकते हैं.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
Krishna is so great.
कृष्ण इतने महान.
In the time that I just spoke whatever little uselessness I spoke, Krishna spoke the whole Gita in this amount of time.
इतनी देर में जितना मैंने बोला उतनी देर में कृष्ण ने पूरी गीता बोली.
To establish the highest truth for the whole world for all time to come.
और पूरा परम सत्य आने वाले सब पीढ़ियों के लिए पेश किया।
श्री भगवान कृष्ण की, श्री कुरुक्षेत्र धाम की, श्री प्रभुपाद की, श्री भगवद गीता एज इट इज की, पिताई
श्रीमेश राधानाथ महाराज की, श्रीमेश चंद्रमणि स्वामी महाराज की, श्रीमेश सुखदेव गोस्वामी महाराज की,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। The teaching of Gita culminates in always remembering Krishna.
गीता की शिक्षाओं का सार है सब कुछ हमेशा कृष्ण को स्मरण।
Krishna has taught us the process in this age of Kali is Hari Nam Sankirtan.
और कलयुग में विधि है हरि नाम संकीर्तन।
This is a glorious place.
ये बहुत यशस्वी स्थान है।
To perfectly execute the essence of Gita and performance of Kirtan.